بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتہ سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمی لوگوں کو اور تم اپنے آتمی لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں۔ تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये तेरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, आज गुरुवार है, मुहर्रम की 6, मुर्दाद की 13 और अगस्त की 4 तारीख। हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wbs.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप मुहर्रम के संबंध में सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा आज की बात। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के भड़काऊ कदमों से शांति व सुरक्षा को गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि उसकी रक्षा नीति में परमाणु हथियारों का कोई स्थान नहीं है। चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि अमेरिका के भड़काऊ कदमों से विश्व की शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिया ने चीन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने वाला कदम उठाने पर अमेरिका के खिलाफ यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, शांति स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय उसूल है और इसी संदर्भ में अखंड चीन का समर्थन करना इस्लामी गणतंत्र ईरान की नीति है। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा को कई देशों ने भड़काऊ कदम करार दिया है। खुद अमेरिका के भीतर भी इस यात्रा को अनावश्यक कार्रवाई कहा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस यात्रा से पहले कहा था कि सेना की नजर में ये यात्रा इस समय उचित नहीं है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा है कि इस देश की रक्षा नीति में परमाणु हथियारों का कोई स्थान नहीं है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT के प्रति वचनबद्ध है और उसने कभी भी परमाणु हथियारों की जरूरत का आभास तक नहीं किया। उन्होंने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में बल देकर कहा कि तेहरान NPT के प्रति वचनबद्ध है और उसने कभी भी न तो परमाणु हथियारों की जरूरत का आभास महसूस किया और न कर रहा है, क्योंकि हमारी रक्षा नीति में न तो परमाणु बम का कोई स्थान है और न ही हमारी धार्मिक आस्था में। इसी प्रकार मोहम्मद इस्लामी ने संवर्धित यूरेनियम के स्तर के बारे में कहा कि कानून के आधार पर नई सेंट्रीफ्यूज मशीनों की क्षमता के दृष्टिगत यूरेनियम के संवर्धन को 1,90,000 सू तक पहुंचाना चाहिए और इसमें परमाणु संयंत्र में आधुनिकतम सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही हैं। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि होशियारी और सुरक्षा चौकसी परमाणु संयंत्रों के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाइयों की नाकामी का कारण बनी है। ईरान पर लगे गैर कानूनी अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और परमाणु डील बहाल करने के विषय पर वियन में वार्ता फिर से शुरू होने जा रही है। ईरान और अमेरिकी वार्ताकार टीमें वार्ता के लिए पहुंच चुकी हैं। ईरान के मामले में अमेरिका के विशेष दूत ने कहा कि उन्हें उम्मीद बहुत कम है, मगर एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसी हफ्ते के आखिर तक महत्वपूर्ण सहमति हो जानी चाहिए। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाकरी ने कहा कि वियना में आगामी वार्ता का लक्ष्य परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी की परिस्थितियों का निर्धारण करना है, जबकि ईरान तो इस समझौते से बाहर ही नहीं निकला और अमेरिका को ईरान के सामने शर्त रखने का कोई अधिकार नहीं है। अली बाकरी ने कहा कि अब यही मौका है जिसमें अमेरिका की इरादे की असलियत को परखा जा सकता है कि वो कितना गंभीर है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा समाप्त होने के बाद बताया है कि जिस समय पेलोसी ताइवान में थी, 27 चीनी युद्धक विमान ताइवान की सीमा के भीतर घुसे थे। ताइवान ने भी इसकी पुष्टि की है कि चीन के 27 युद्धक विमान ताइवान की वायु सीमा में घुसे, जिसे बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेलोसी की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजिंग में अमेरिका के राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसी बीच G7 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि पेलोसी की यात्रा को वजह बनाकर चीन को सैनिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के बीच अब कठोर कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका को इस यात्रा पर रोक लगानी चाहिए थी। रूस के क्रेमलिन हाउस ने कहा है कि इस यात्रा से जो तनाव पैदा हुआ है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने गुरुवार को ताइवान के नजदीक समुद्र में कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। चीन ताइवान को समुद्र में घेरकर अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान ने इसे क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला विवेकहीन कदम बताया है। जापान के प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन ने आज सुबह 5 मिसाइल फायर किया जो जापान के आर्थिक क्षेत्र में आकर गिरे। जापानी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में ऐलान किया है कि चीन के ये बैलिस्टिक मिसाइल थे जो जापान के आर्थिक क्षेत्र में आकर गिरे। प्राप्त समाचारों के अनुसार जापान ने चीन से बैलिस्टिक मिसाइलों के गिरने पर आधिकारिक आपत्ति जताई है। इससे पहले ताइवान के प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी ताइवान के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में चीन की ओर से फायर किए गए कई बैलिस्टिक मिसाइलों के गिरने की सूचना दी थी। पश्चिमी संचार माध्यमों ने भी चीन द्वारा फायर किए गए मिसाइलों की सूचना दी है और कहा है कि चीन ने जो सैन्य अभ्यास आरंभ कर रखा है, ये उसका एक भाग था। यूरोपीय संघ ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मानता, वो वन चाइना नीति का समर्थक है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद तल्ख हुए अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच यूरोपीय यूनियन ने चीन को बातचीत के जरिए आपसी मतभेदों को सुलझाने की सलाह दी है। और अंत में यह समाचार कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें और अन्य विपक्षी दलों की आवाजों को चुप कराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार दबाव की रणनीति का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें और अन्य विपक्षी दलों की आवाजों को चुप कराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 5 दिनों में लगभग 50 घंटे तक पूछताछ की थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے نینسی پیلوسی کی حالیہ ویوادت تائیوان یاترا پر ایران کے بیان کے بارے میں۔
ایران کے ودیش منتری نے ایکل چین کا سمرتھن کیا۔
اور پھر بات کریں گے حجاب کو لے کر فرانس کو سنیوکت راشٹر سنگھ کی پڑی پھٹکار کے بارے میں۔
سنیوکت راشٹر سنگھ کی جنیوا استھت مانوادھیکار کمیٹی نے حجاب۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں محرم کے موقع پر ایک بار پھر ایکترت ہوئے شیعہ سنی دھرم گروؤں کے بارے میں ہمارے سنواددات آپ کو بتائیں گے۔
سری نگر میں محرم الحرام کے حوالے سے
تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی سنسد سبھاپتی نینسی پیلوسی کی حالیہ تائیوان یاترا اور اس کے بعد مچے انتراشٹریہ استر پر گھماسان کے بارے میں۔ اس مدعے پر ایران نے اپنا درشٹی کوڑ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اکھنڈ چین کا سمرتھن کرتے ہیں۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی۔
ایران کے ودیش منتری نے ایکل چین کا سمرتھن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی اکساوے والی کارواہیاں انتراشٹریہ شانتی کے لیے چنوتیاں بنتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی سنسد سبھاپتی نینسی پیلوسی کی حالیہ تائیوان یاترا کے سندربھ میں حسین امیر عبداللہیان نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیشوں کی راشٹریہ سمپربھوتا اور اکھنڈتا کا سمان کرنا انتراشٹریہ نیموں کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی سندربھ میں اکھنڈ چین کا سمرتھن کرنا اسلامی گڑتنت ایران کی نیتی ہے۔ ایکل چین کے سمرتھن پر ایران کی اور سے بل دیا جانا چین کے آنتک معاملوں میں امریکہ کی ہستکشیپ پورن کاروائیوں کے ویروتھ کے ارتھ میں ہے۔ منگلوار کو امریکہ کی سنسد سبھاپتی نینسی پیلوسی نے تائیوان کی ویوادت یاترا کی تھی۔ چین نے نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے کو لے کر آکرامک رخ اپنایا ہے اور اپنے لڑاکو ویمانوں کو تائیوان کے قریب بھیج دیا تھا۔ پیلوسی کے تائیوان پہنچنے کے ساتھ ہی چین کے کچھ یدھک ویمان تائیوان کے شیتر میں اڑتے دکھائی دیے۔ امریکہ کی سنسد سبھاپتی کی تائیوان یاترا کو چین کے آنترک معاملوں میں واشنگٹن کے ہستکشیپ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ سن 1997 کے بعد سے تائیوان کی کسی امریکی سنسد سبھاپتی کی یہ پہلی یاترا بتائی جا رہی ہے۔ جس سمے نینسی پیلوسی نے تائیوان کی یاترا آرمبھ کی تھی، اس سمے ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے پرتکریا ویکت کرتے ہوئے ایکل چین کے سندرب کی نیتی پر بل دیا تھا۔ انہوں نے اس یاترا کو چین کی سمپربھوتا کا الگھن بتایا تھا۔ کنانی نے کہا تھا کہ ایران سبھی دیشوں کی سمپربھوتا کا سمان کرتا ہے اور ایکل چین کا سمرتھن اسی نیتی کا ہی ایک بھاگ ہے۔ امریکی سنسد کی پرتندھی سبھا کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے حالیہ تائیوان یاترا کو کئی دیشوں نے بھڑکاؤ قدم بھی بتایا ہے۔ امریکہ کے بھیتر بھی اس یاترا کو اناوشک کاروائی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی نیتتو کی اور سے تائیوان کے دورے کو تائیوان کی آزادی کے وچار کو اکسانے کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ वाशिंगटन में ताइवान के साथ सरकारी सतह पर कोई संबंध नहीं है, मगर ताइवान के लिए तयशुदा कानून अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वो इस द्वीप को आत्मरक्षा के लिए मदद करे। हालिया कुछ वर्षों के दौरान ईरान और चीन के संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जा रही है, विशेषकर अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों के मुकाबले में। अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत करने में चीन और ईरान के पास कई आधार हैं, जिसमें संयुक्त हित सर्वोपरि हैं। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना भाग बताता है। यही कारण है कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को वो चीनी राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। इसीलिए वो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध करता जा रहा है, जबकि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करके विश्व जनमत को ये संदेश देना चाहती हैं कि ताइवान चीन से अलग एक स्वतंत्र देश है जो चीन को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
और अब चर्चा करते हैं मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले फ्रांस की। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार कमेटी ने फ्रांस में हिजाब पर लगी पाबंदी को राजनैतिक व नागरिक आज़ादी की अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताया है। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
संयुक्त राष्ट्र संघ की जिनेवा स्थित मानवाधिकार कमेटी ने हिजाब के मामले में भेदभाव बरतने पर फ्रांस को लताड़ लगाई है। एक हाई स्कूल में वयस्कों के लिए आयोजित किए गए शैक्षिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिला को हिजाब पहनने से रोकने के मामले में मानवाधिकार कमेटी ने कहा कि फ्रांस ने नागरिक व राजनैतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है। कमेटी का यह फैसला मार्च महीने में लिया गया था, मगर बुधवार को इस फैसले से याचिकर्ता के वकील को सूचित किया गया। यह फैसला 2016 में की गई शिकायत के मामले में आया है, जिसमें 1977 में जन्मी महिला ने कहा था कि वर्ष 2010 में एक स्कूल में बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उसने हिजाब के साथ शामिल होना चाहा तो प्रिंसिपल ने रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार कमेटी ने कहा कि याचिकर्ता महिला पर जो पाबंदियां लगाई गईं, वो राजनैतिक व नागरिक आजादी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है और इससे धार्मिक आजादी पर प्रहार होता है। याचिकर्ता के वकील ने कहा कि कमेटी का यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान का ये मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमेटी का यह फैसला फ्रांस के उन अधिकारियों के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो अपना अलग राग अलापते रहते हैं कि वे धर्म के प्रतीकों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे सकते। फ्रांस में कई साल से मुसलमान महिलाएं और लड़कियां भारी दबाव का सामना कर रही हैं। उन्हें हिजाब के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। फ्रांस में हालिया वर्षों में इस्लामोफोबिया की लहर भी लगातार बढ़ती रही और मुसलमानों पर हमले तेज हुए। इमैनुअल मैक्रां की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून भी पास किए गए, जिससे उनकी जिंदगी में कठिनाइयां पैदा हुई। फ्रांस की सरकार ने फरवरी 2022 में एक संस्था बनाई, जिसका काम यह है कि मुसलमानों के तौर तरीकों को फ्रांसीसी समाज और नियमों के अनुसार ढाले। ये दरअसल देश में इस्लाम पर एक योजनाबद्ध हमला है। इस्लाम के बारे में मैक्रां की सोच खराब है और वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों में लिप्त रहे हैं। इस्लामी मानवाधिकार आयोग के प्रमुख मसूद शजरे ने कहा कि मैक्रां खुलेआम इस्लाम पर हमले कर रहे हैं और वो इस्लाम के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि फ्रांस की नीतियां और यूरोपीय राजनेता खुद गंभीर संकट में पड़े हुए हैं। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार कमेटी का ये फैसला महत्वपूर्ण माना जाता है और ये भी आशा है कि इससे दूसरे देशों को भी सबक मिलेगा जो हिजाब के सिलसिले में फ्रांस की सरकार के नक्शे कदम पर चलने की योजना बना रहे थे।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं कश्मीर में। एक बार फिर मुहर्रम के मौके पर متحدہ مجلس علماء کے بینر تلے اکتریت ہوئے شیعہ سنی دھرم گروہوں نے محرم کے جلوسوں پر لگی پابندیوں کو سماپت کرنے کی مانگ کی ہے. اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمباددادتا سپتے محمد حسن.
سری نگر میں محرم الحرام کے حوالے سے دارمک گٹھوں کے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء کے بینر تلے شیعہ سنی کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک اہم بیٹھک آیوجت ہوئی جس میں تمام دارمک دلوں کے نیتاؤں نے بھاگ لیا. اس میں لوگوں نے بل دیا کہ وہ ایکتا کو قائم و دائم رکھے. اس اوسر پر دکشنی کشمیر کے ایک مانی دھرم گرو سمیر صدیقی نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا,
آج یہاں پر متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر کی ایک ہنگامی نشست طلب کی گئی. نوہٹہ میں مسجد جامعہ کے اس مرکزی دفتر پر جہاں پر مختلف انجمنوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی, سب کی ایک متحدہ آواز ہے کہ محرم الحرام کے جو یہ ایام ہیں ان میں شیعہ سنی اتحاد کی فضا کو برقرار رکھا جائے اور کسی بھی رخنہ باز جو سستی شہرت کے لیے فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جو ہے اتحاد ملی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے عناصر پر قدغن لگائی جائے. ہر ایک مکاتب فکر کے علماء اپنے ان بلیک شیپس کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے ان کی شیمنگ کرے اور ان کو اپنے مکتب فکر سے جو ہے ان میں آئیڈینٹیفائی کرے, اور اس اعتبار سے جو ہے تمام علماء کرام بھی اتحاد ملی کی فضا بنانے میں فعال کردار ادا کریں. جیسے کہ کچھ چمہ گویا ہوئی تھی کہ محرم الحرام جو ہے اس میں شہادت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی تاریخی حقیقت نہیں. متحدہ مجلس علماء نے اس قسم کے تمام چمہ گوئیوں کا جو ہے واش گاف انداز میں اس کی مذمت کی, اور سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے میدان کربلا میں دین اسلام کے تئی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو سراتے ہوئے اس کو عالم اسلام کے لیے اور ملت اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی قرار دیا.
الیکھنیہ ہے کہ کچھ سمے سے یہاں پر ایسی کئی گھٹنائیں گھٹی ہیں جس میں لوگوں میں مدبھید پیدا کرنے کے پریاس کیے گئے پرنتو ان کو اسفل بنا دیا گیا. دارمک نیتاؤں نے تمام دارمک دلوں پر بل دیا کہ وہ ایکتا کے لیے اپنے کاریوں میں تیزی لائے. انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص دھرم کا میسنجر نہیں ہے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسنجر ہے, لہذا ہمیں ایک جٹ ہو کر ان طاقتوں کو اسفل بنانا ہوگا جو یہاں پر مسلمانوں میں مدبھید پیدا کرنے کے پریاس کر رہے ہیں. مولانا سمیر صدیقی نے کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں جو جلوس ہائے عزا برآمد ہوتے ہیں ان میں تمام مسلمانوں کو ہم ایک جٹ ہو کر بھاگ لینے کا آہوان کرتے ہیں. انہوں نے اس اوسر پر موجودہ پرشاسن سے بھی آہوان کیا کہ وہ کیندری جلوسوں پر جو پچھلے 33 وشوں سے پرتبند گھوشت کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر ہٹائے. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی گانتانتر ایران کی آواز. شوتاؤ, اب پرسد ہے محرم کے سمبندھ میں ہمارا وشیش کارکرم.
दोस्तों, मुहर्रम महीने के मौके पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं. स्वाति और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए.
बहुत से महापुरुष और वे लोग जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं उनकी सफलता के पीछे दो प्रकार की महिलाओं का बलिदान रहा है. पहला गुट उन मोमिन और बलिदानी माताओं का है जो इस प्रकार के बच्चों के पालन पोषण में सफल हुईं. दूसरा गुट उन महिलाओं का है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन घटनाओं के समक्ष डट गईं. इस प्रकार से घटना के पीछे या विभिन्न मंचों पर परोक्ष रूप से महिलाओं की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती. इस्लामी इतिहास की अद्वितीय और अनुदाहरणीय घटना जिसमें इस्लामी समाज में मूल परिवर्तन उत्पन्न कर दिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महाआंदोलन है। इस पवित्र महाआंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुटों में से एक महिलाओं का गुट था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान न्योछावर करने के लिए अपनी तैयारी की घोषणा कर दी थी। इन सभी महिलाओं ने अपने पतियों और बच्चों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हीं महिलाओं में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रबाब, उम्मे खलफ, उम्मे अम्र और उम्मे वहब के नामों की ओर इशारा किया जा सकता है।
इस महाआंदोलन में महिलाओं ने दर्शा दिया कि जब भी धर्म के समर्थन, न्याय और सत्य की स्थापना की चर्चा होगी तो वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ऐतिहासिक और प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इमाम हुसैन अली सलाम ने कहा, महाआंदोलन में महिलाओं की उपस्थिति एक प्रकार से हजरत इमाम हुसैन अली सलाम के आंदोलन को परिपूर्णता तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कारक था और उन महिलाओं ने इस सिलसिले में अनोखी भूमिका निभाई थी। आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महाआंदोलन में यजीदी सेना के हजारों पदभ्रष्ट सैनिक कुछ गिने चुने सत्य प्रेमियों के मुकाबले पर आ गए। स्पष्ट सी बात है, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति प्रतिरोध कर सकता है जो वीरता, साहस और ईमान के श्रेष्ठतम स्थान पर हो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में कुछ ऐसे थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मार्ग के सही और सच्चा होने में संदेह और शंका नहीं रखते थे और कोई भी चीज उनको सत्य की रक्षा में बाधित नहीं कर सकती थी। किंतु दूसरा गुट आरंभ में शंकाग्रस्त था। इन लोगों में जुहैर इब्ने कैन थे। वे आरंभ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सहायता करने से दूर रहे किंतु अपनी पत्नी दैलम बिनते अम्र के प्रेरित करने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मार्ग पर चल निकले।
जुहैर इब्ने कैन के एक मित्र का कहना है कि हम सन 60 हिजरी कमरी में हज करके मक्का गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खतरों भरी यात्रा की सूचना के दृष्टिगत हमने इमाम हुसैन के कारवां से दूर ही रहने का प्रयास किया ताकि उनसे आमना सामना न हो जाए। जब हमारा कारवां एक पड़ाव पर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का कारवां भी वहां पर पहुंच गया। अभी हमने खाना खाना आरंभ भी किया था कि इमाम हुसैन का दूत हमारे पास आया और सलाम करने के बाद उसने जुहैर इब्ने कैन से कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुमको याद किया है। ये बात सुनकर जुहैर इब्ने कैन इतना आश्चर्यचकित हुए कि जो कुछ भी उनके हाथ में था जमीन पर गिर पड़ा। उसी आश्चर्य और मौन के वातावरण में अचानक जुहैर की पत्नी की आवाज़ गूंजी, क्या बात है? पैगंबर इस्लाम का नाती तुम्हें अपने पास बुला रहा है और तुम उसके पास नहीं जा रहे हो, आखिर तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यदि उनके पास गए और उनकी बात तुमने सुन ली। जुहैर इब्ने कैन की पत्नी के शब्द ऐसी निष्ठा और दिल की गहराइयों से निकले कि इन्हीं एक दो वाक्यों ने जुहैर को अंदर से झिंझोड़ दिया और उन्होंने इमाम हुसैन से भेंट की और उनके साथ हो गए। यदि जुहैर के भाग्य में ऐसी पत्नी न होती तो उन्हें ईश्वर के मार्ग में शहादत और इमाम हुसैन के साथ रहने का गौरव प्राप्त न होता। जुहैर की पत्नी ने विदाई के समय जुहैर से इच्छा जताई कि वे प्रलय के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी सिफारिश करेंगे।
करबला की वीर महिलाओं में से एक वहब की माँ थी। वे अपने इकलौते पुत्र वहब और अपनी बहू के साथ एक स्थान पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां से मिली और उनके साथ हो गई। वहब की मां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आध्यात्मिक और मानसिक सद्गुणों में ऐसा खो गई थी कि उनकी सहायता के लिए उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। करबला में महाआंदोलन के दिन वह बार बार अपनी मां के उत्साह बढ़ाने और प्रेरित करने से रणक्षेत्र गए और साहसपूर्ण युद्ध किया और शहीद हो गए। उनकी माँ उनके शव पर आई और वहब के चेहरे से रक्त साफ करती जा रही थी और कह रही थी कि धन्य है वह ईश्वर जिसने हुसैन इब्न अली के साथ तुम्हारी शहादत से मुझे गौरवान्वित कर दिया। अपने सुपुत्र की शहादत के पश्चात तंबू के स्तंभ की लकड़ी को लेकर वह शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ी और शहीद हो गई। वह कर्बला की पहली शहीद महिला हैं। अम्र बिन जुनादा की मां भी कर्बला के हृदय विदारक घटना की एक अन्य वीर और त्यागी महिलाएं हैं, जिन्होंने आशुर के दिन इतिहास में ऐसी शौर्य गाथा रची जो कभी न भुलाई जाएगी। जब उनका पुत्र अम्र शहीद हो गया तो शत्रुओं ने उनके पुत्र के सिर को मां के पास भेजा। अम्र की मां ने जब अपने पुत्र के सिर को देखा तो उन्होंने सिर को रणक्षेत्र में फेंक दिया और कहा कि मैंने जो चीज ईश्वर के मार्ग में न्योछावर कर दी है उसे वापस नहीं लूंगी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महा आंदोलन में उपस्थित वीर महिलाओं के व्यवहार और कथन से धर्म के लक्ष्यों की रक्षा में उनकी निष्ठा के स्तर को समझा जा सकता है। इन महिलाओं ने, जबकि वे अपने कंधों पर दुखों का पहाड़ उठाए हुए थीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र नाती की सहायता की और सत्य की रक्षा की। इन त्यागी महिलाओं की मुखिया हज़रत ज़ैनब हैं, ऐसी महिला जिन्होंने हज़रत अली और हज़रत फातिमा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। कर्बला की घटना में हज़रत ज़ैनब की जिस महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया जाता है वो वास्तव में उन विशेषताओं और परिपूर्णताओं का प्रकट होना है जिससे उन्होंने स्वयं को बचपन से ही सुसज्जित कर लिया था।
हजरत ज़ैनब मानसिक परिपूर्णता के उस चरण में पहुंच चुकी थी कि कर्बला की घटना और तथा अपने प्रियजनों की शहादत को उन्होंने ईश्वरीय परीक्षा माना और भ्रष्ट यजीद के समक्ष, जो उनको अपमानित करने का उद्देश्य रखता था, तेज आवाज में कहा कि यजीद, मैंने कर्बला में सुंदरता के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखा। इस घटना में हजरत ज़ैनब का धैर्य अद्वितीय था। ऐसे समय में कि केवल सुबह से दोपहर तक जिसके भाई, भतीजे और पुत्र शहीद हो चुके हो, वह कर्बला की साहसी महिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पवित्र शरीर के पास खड़ी हुई, दृढ़ संकल्प और भावना से ओतप्रोत होकर कहती हैं कि हे ईश्वर, पैगंबर इस्लाम के परिजनों में से इस कुर्बानी को स्वीकार कर, क्योंकि हजरत ज़ैनब एक बड़ी जिम्मेदारी, महान दायित्व और उद्देश्य के बारे में सोच रही थी। ऐसी जिम्मेदारी जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पूर्व बारंबार हजरत ज़ैनब को सौंपा था।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला में मौजूद महिलाओं से इच्छा व्यक्त की थी कि अपनी बुद्धि और युक्ति पर भावनाओं को वरीयता दें, अपने दायित्वों के विपरीत कोई कार्य न करें। इमाम हुसैन जब अपने परिजनों से विदा होकर रणक्षेत्र जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहो और ये जान लो कि ईश्वर तुम्हारा समर्थक और रक्षक है और तुमको शत्रुओं की उद्दंडता से मुक्ति देता है। तुम लोगों को भले अंत तक पहुंचाएगा और तुम्हारे शत्रुओं को विभिन्न प्रकार से प्रकोप में ग्रस्त करेगा। ईश्वर इन समस्त कठिनाइयों और मुसीबतों के बदले विभिन्न प्रकार की अनुकंपाएं देगा। शिकायत मत करना और ऐसी बातें जबान पर मत लाना जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा में कमी हो।
इस प्रकार से कर्बला के महा आंदोलन का दूसरा भाग इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के बाद इमाम हुसैन के संदेश को आगे बढ़ाने के महिलाओं के दायित्व के साथ आरंभ हुआ। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के बाद आरंभिक क्षणों में ही लूट खसोट मच गई और अगली सुबह दुखी बच्चों और महिलाओं को बंदी बना लिया गया। जब शत्रुओं ने बंदी कारवा को कर्बला से कूफा ले जाना चाहा, तो उन्होंने महिलाओं को शहीदों के शवों के पास से गुजारा। यह दुखी महिलाएं अपने परिजनों के शवों के पास पहुंची तो ऐसा दृश्य सामने आया जिसने कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर दिया।
इन प्रभावित कर देने वाले दृश्यों में से एक वो बात है जो जनाब जैनब ने अपने भाई के पवित्र शरीर से कही। बंदियों की यात्रा के दौरान पैगंबर इस्लाम के परिजनों में से प्रत्येक महिला ने उचित अवसरों पर भाषण दिए और लोगों को वास्तविकताओं से अवगत करवाया। जनाब जैनब के अतिरिक्त इमाम हुसैन की पुत्री हज़रत फातिमा कुबरा और इमाम हुसैन की दूसरी बहन उम्मे कुलसूम हर एक ने कूफे में ऐसा भाषण दिया कि कूफे के बाजार में हलचल मच गई और लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। इतिहास में आया है कि कूफे की महिलाओं ने जब ये भाषण सुने तो उन्हें अपने सिरों पर मिट्टी डाली और अपने मुंह पर तमाचे मारे और ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों की महिलाओं का प्रयास करबला की घटना के विवरण का उल्लेख करना था। ये विषय जनता की भावना को भड़काने के अतिरिक्त करबला की घटना को फेरबदल से सुरक्षित रखने का कारण भी बना और इससे बनी उमैया के हर प्रकार की भ्रांति फैलाने का अवसर भी छिन गया।
वास्तव में महिलाओं ने अत्याचार से संघर्ष में उपयोगी शस्त्र के रूप में अपने बंदी काल का प्रयोग किया और भ्रष्ट मिथ्याचार के चेहरे से नकाब उलट दिए। इन महिलाओं ने इस्लामी जगत की तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों कूफा, सीरिया और मदीने में लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया। यद्यपि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महा आंदोलन अपनी सत्यता और सच्चाई के लिए ठोस और सुदृढ़ प्रमाण रखता था, किंतु महिलाओं ने इस घटना के भावनात्मक आयामों की गहराई से लोगों के मन को आकृष्ट करने के लिए एक अन्य कदम उठाया। करबला की महिलाओं ने अपने सुदृढ़ और तर्कसंगत भाषणों द्वारा लोगों का सच्चाई के मार्ग की ओर मार्गदर्शन किया।
जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे,
जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे,
जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे,
जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे,
रोज़े शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे,
जाने वाले करबला के करबला ले।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम भारत की जांच एजेंसियों के क्रियाकलापों पर उठते सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जांच एजेंसियों के बारे में चर्चा करना कोई आसान काम नहीं है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। वैसे आजकल ये मुद्दा पूरे भारत में छाया हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत की जांच एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, वहीं आम लोगों के दिलों में भी इन एजेंसियों के क्रियाकलापों को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि जिस तरह जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उससे लगता है कि भारत की मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। सबसे पहले हम आपको भारत की उन जांच एजेंसियों के बारे में बता दें कि जिनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ये भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका काम आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग अलग मामलों की जांच करना है। सरकार की सिफारिश पर यह एजेंसी किसी भी मामले की जांच करती है। ये एजेंसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसके अधिकार और काम दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ही इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी, ईडी भारत की ऐसी खुफिया एजेंसी है जो देश में वित्तीय मामलों से जुड़े अपराधों पर नजर रखती है। देश में ये एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करती है। इसी तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए, इसका काम भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना है। ये एक संघीय जांच एजेंसी है। एनआईए किसी रोक टोक और बिना किसी की अनुमति के कार्रवाई कर सकती है। एनआईए किसी भी सेंट्रल एजेंसी या राज्यों की पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। पूरा भारत एनआईए के अधिकार क्षेत्र में आता है। एनआईए को किसी भी राज्य में कार्रवाई करने के लिए उस राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी सीबीआई और ईडी की तरह खुफिया एजेंसी है। ये देश में आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखती है। अब सवाल यह है कि क्या इन एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल होता है या नहीं? इसके जवाब में भारत के पूर्व गृह सचिव जे के पिल्लई कहते हैं,
See, I believe that you see all these agencies, their head of these agencies are bound by the rule of law and the constitution. So if you see that these agencies are, let me put it this way, are either misusing the law or if I may call it, they are using it for political purposes, if you want to make it explicit, then they should be hauled up in the court when it is taken to the court.
वहीं यहाँ ये सवाल उठता है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहाँ से उठना शुरू हुई। वैसे कहते हैं कि भारत की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी मानी जाने वाली सीबीआई को लेकर सबसे पहले दुरुपयोग की बात सामने आई थी। सीबीआई पर टिप्पणी करते हुए एक बार भारत की सर्वोच्च अदालत ने उसे तोते का पिंजरा भी कहा था। इस संबंध में सीबीआई के पूर्व अधिकारी एन के सिंह कहते हैं,
देखिए मैं सीबीआई में 10 साल काम किया। मैं सीबीआई में इमरजेंसी के पहले गया, इमरजेंसी के दरमियान में भी गया, फिर उस समय भी जनता पार्टी सरकार जब आई उस समय भी था, जब बीपी सिंह की सरकार थी उस समय भी था। तो मैंने सीबीआई का उतार चढ़ाव देखा है। मैं कह सकता हूँ दो चीजें मैं कहूंगा। नंबर एक, सीबीआई का गोल्डन पीरियड था जबकि लाल बहादुर शास्त्री, जिनको आप इनका फाउंडर कहा जा सकता है, 1963 में सीबीआई का निर्माण किया गया, और जब वो होम मिनिस्टर थे और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो सीबीआई का गोल्डन पीरियड था क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो उस समय की थी वो सीबीआई को निष्पक्ष और एक कॉम्पिटेंट एजेंसी जो करप्शन से को विरुद्ध संघर्ष कर सके, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके, सीबीआई चाहती थी। और वो उनको सहयोग मिला मिस्टर एलपी सिंह आईसीएफ और बीपी कोहली जो पहला डायरेक्टर सीबीआई है, ये दोनों के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री ने इनका निर्माण किया और सीबीआई को एक निष्पक्ष एजेंसी बनाने का प्रयास किया और काफी हद तक सफलता मिल भी गया। लेकिन सीबीआई को पहला धक्का लगा जबकि इमरजेंसी आया, और मैं इमरजेंसी में सीबीआई में था और मैंने देखा कि सीबीआई का सीबीआई में किस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्रारंभ हो गया बुरी तरह से। बहुत सारे गलत काम हुए, उसमें एक ये भी था कि इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया। तो आज की स्थिति यही है कि आज कोई भी ऐसा नहीं है जो एक निष्पक्ष सीबीआई चाहता है, पॉलिटिकल क्लास नहीं चाहता है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफी बाधक है इस मामले में सीबीआई को निष्पक्ष करने में।
वहीं एनसीबी के द्वारा हालिया दिनों में की गई कार्रवाइयों को लेकर भी काफी सवाल उठे हैं। कहा गया है कि ये एजेंसी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। इन आरोपों के जवाब में एनसीबी के पूर्व सहायक निर्देशक उमाकांत मिश्रा कहते हैं,
मेरे हिसाब से एनसीबी ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास अगर कोई खबर आया कि भाई यहाँ ये चीज हो रहा है, चाहे वो 20 ग्राम का हो, 20 किलो का या 2000 टन का हो, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा। जहां तक एनफोर्समेंट की बात आती है, छोटे आदमी बड़े आदमी बराबर है, लेकिन क्योंकि वो न्यूज़वर्दी आइटम हो जाता है, देन बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। इवन इन्वेस्टिगेशन भी कभी कभी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, इवन द कोर्ट प्रोसेसेस भी कभी कभी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, तो वो, लेकिन देयर आर वेरी रेयर इंस्टेंसेस। इसके सबसे बड़ा बढ़िया फॉल आउट ये होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो केस का जो मेरिट डीमेरिट के ऊपर नहीं जाके, मैं कहूंगा कि जब भी कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस आदमी अगर इस ये में आता है और उसको काफी पब्लिसिटी मिलता है, उसका एक फायदा तो जरूर होता है कि जो सोशल अवेयरनेस है वो काफी बढ़ जाता है कि हाँ ड्रग्स का जो ये है उसका जो इल इफेक्ट है यहाँ तक भी पहुंचता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन।
वहीं भारत में पुलिस की जांचों पर तो न केवल आम लोगों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा हमेशा सवाल उठाता जाता रहा है, बल्कि स्वयं जांच एजेंसियां भी पुलिस की कार्रवाइयों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती हैं। इस बीच अब खुद जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां भी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसी स्थिति में देश के संघीय ढांचे को कितना नुकसान पहुंच रहा है और ये स्थिति क्यों है, इस बारे में पूर्व आईपीएस अधिकारी वेद भूषण कहते हैं कि
आर्मी है, कोर्ट्स है, एनसीबी है, डीआरआई है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम एजेंसीज के ऊपर केवल दो डायलॉग बहुत प्रचलित हो गए हैं, तो पिंजरे का तोता, दूसरा हमें अदालतों पर विश्वास है, किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जब अमित शाह अरेस्ट होते हैं तो वो बीजेपी एलिगेशन लगाती है कि कांग्रेस से इशारे पर किया गया। चिदम्बरम जी जब अरेस्ट होते हैं 106 दिन जेल में रहकर आते हैं तो एलिगेशन लगाया जाता है कि ये सारा काम दूसरी पार्टी है। तो ये एक बहुत गेम बन गया है और ये बड़े पैट डायलॉग है कि हमें इन एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए मिसयूज की संभावना क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिशन का एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो एजेंसीज की कुछ डिस्क्रिशन पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट की भी डिस्क्रिशन पावर्स होती हैं, तो उसका जो मिसयूज, जिसको इंटरफेरेंस लिया जाता है कि इसका मिसयूज हो रहा है। आप देखिए, कोटा का कानून बना, मीसा बना, मको का है, टाडा है, तमाम बहुत सारे कानून इस क्रम के अंदर बने, आफ्शा है जो आर्म फोर्सेस के J&K और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ये बड़ा डिबेट का टॉपिक रहा है। कुछ कानून को स्क्रैप करना पड़ा है, कुछ अदालतों ने बहुत सारे जजमेंट दिए, चाहे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट है, अनेश कुमार जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट्स आए। एक सतत प्रक्रिया है, इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और गुंजाइश सारी एजेंसी करती हैं, अदालतें भी रेक्टिफिकेशन करती हैं उसके लिए, परंतु केवल कह देना कि इसका केवल मिसयूज होता रहा, क्योंकि सारी एजेंसीज के लिए एक SOP है, एक गाइडलाइंस है, कानून है, एंड अबव ऑल कोर्ट्स हैं, तो सारी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करती है। जो भी FIR दर्ज होती है उसका सारा का सारा अंत जो है वो अदालतों के अंदर होता है, तो अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि वो देख पाए, और जहां अदालतें देखती हैं कि मिसयूज ऑफ लॉ है। अभी दिल्ली का ही धोला कुआ का एनकाउंटर था, फेक पाया गया, अदालत ने किस तरह से ड्रेकोनियन तरीके से पुलिस वालों को जेल भेजा, और बहुत सारे एग्जाम्पल है भी हैदराबाद रेप केस का।
यहाँ अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए जांच एजेंसियों और उसके अधिकारी बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपनी जांच कर सकें। इसके जवाब में भारत के पूर्व गृह सचिव J.K. पिल्लई कहते हैं,
There is a general, insofar as the general law and order is concerned, there is a slight, it's a slightly more, shall I say, closer relationship, because the government of the day is responsible for a law and order situation. But in the case of the investigation into particular crimes and so on, and that is where the real issue comes. The officer must have the full responsibility, and if he finds that his arms are like are tied by any direction of the central government or the state government, as the case may be, he is duty bound to ignore those, record those in writing, and if in spite of that, he is then say, I'm just saying, if the officer is then, the investigating officer or the person in charge is then transferred by the state government, the central government, to put, shall I say, a more pliant officer, that is where the officer should have the right to go to the court and say, this is what I was doing, this investigation, this is what I put in writing, and as a result of which I am now being transferred out to investigation. Court should be able to intervene immediately to stay that and to allow that officer to conduct his investigation independently.
दोस्तों जैसा कि जेके पिल्लई ने कहा कि इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए देश की जांच एजेंसियों के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के संविधान को दृष्टिगत रखते हुए केवल और केवल उसी पर अमल करें और अगर उन्हें किसी केस की जांच से हटाया जाता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं और अपनी जाँच को जारी रखें। बहरहाल इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच एजेंसियों की जांचों में गड़बड़ियां हैं और उन पर राजनीतिक दबाव भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की हाल की कार्रवाइयों से साफ है कि बीजेपी और गैर बीजेपी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच के मामलों में उनका रवैया अलग अलग है। यही वजह है कि विपक्ष इन एजेंसियों के कामकाज को राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सभी एजेंसियों को न्यायिक देखरेख में एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इन तमाम एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखनी है तो बहुत हद तक आंतरिक बदलाव उन्हें करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अदालतों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। समय अब यहीं समाप्त होता है, अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के भड़काऊ कदमों से शांति व सुरक्षा को गंभीर समस्याएं हो रही हैं। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि उसकी रक्षा नीति में परमाणु हथियारों का कोई स्थान नहीं है। चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। तो श्रोताओं इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.